भागवतम स्कंद एक अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 8। अहो सनाथा भवता स्वयद्वयम् त्रैवेष्ट पानामपि दूरदर्शनम् स्मितस्निग्ध निरीक्षणानम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् अहो सनाथा भवता स्मयद्वयम् त्रैवेष्ट पानामपि दूरदर्शनम् प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् अहो सनाथा भवता स्मयद्वयम् त्रैवेष्ट पानामपि दूरदर्शनम् प्रेमास्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् अहो सनाथा भवता स्मयद्वयम् तैवेष्ट पानामपि दूरदर्शनम् प्रेमास्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्
यह तो हमारा सौभाग्य है। सनाथा स्वामी के संरक्षण में होना, भवता आपके द्वारा, स्म जैसे हम बन चुके हैं, यत वयम जैसे कि हम हैं, त्रैविष्ट पानाम देवताओं को, अपि भी दूरदर्शनम बहुत कम दिखाई पड़ते हैं,
प्रेमस्मिता प्रेम से हंसते हुए स्निग्ध स्नेहपूर्ण निरीक्षणाननम उस प्रकार से दिखने वाला मुख पश्येम देखे रूपम सौंदर्य तव तुम्हारा सर्व संपूर्ण सौभगम सौभाग्य। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। ओह, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्गवासियों तक के यहाँ बहुत कम जाते हैं। अब आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए संभव हो सका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। आज हम आपके सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। तात्पर्य, केवल शुद्ध भक्त ही भगवान के नित्य साकार रूप का दर्शन कर सकते हैं। भगवान कभी निराकार नहीं होते, अपितु वे परमेश्वर हैं जिन्हें भक्ति के द्वारा साक्षात देखा जा सकता है, जो स्वर्गवासियों के लिए भी दुर्लभ है। जब ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश भगवान विष्णु से राय लेना चाहते हैं, तो उन्हें क्षीर सागर के तट पर जाकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जहां भगवान विष्णु श्वेत द्वीप में शयन कर रहे होते हैं। यह क्षीर सागर तथा श्वेत द्वीप लोक इस ब्रह्मांड के अंतर्गत वैकुंठ लोक की प्रतिकृतियां हैं। इस श्वेत द्वीप में न तो ब्रह्मा जी न ही इंद्र जैसे देवता प्रवेश कर पाते हैं, अपितु उन्हें क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर क्षीरोदक्षायी विष्णु को अपना संदेश भेजना होता है। अतएव उन्हें विरले ही भगवान के दर्शन हो पाते हैं। लेकिन द्वारका के वासी किसी प्रकार के सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन के भौतिक कलमश से रहित शुद्ध भक्त होने के कारण उनका साक्षात दर्शन कर सकते हैं। यह जीवों की आदि स्थिति है और भक्ति के द्वारा अपनी प्राकृतिक तथा आध्यात्मिक जीवन दशा को समझ करके प्राप्त की जा सकती है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो पिछले श्लोक में वर्णन किया जा रहा था कि कैसे भगवान सब कुछ है, हमारे स्वामी हमारे पिता हमारे माता सब कुछ भगवान ही हैं, ऐसा वर्णन पिछले श्लोक में हुआ। और किस प्रकार सब कुछ भगवान की शक्ति से होता है और कैसे हम भगवान को जान सकते हैं, और आज के श्लोक में श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि कैसे भगवान को देख सकते हैं सीधे प्रत्यक्ष, जैसे द्वारका के लोग देख रहे हैं। तो प्रभुपाद वर्णन करते हैं तात्पर्य में कि द्वारका के लोग भगवान को देख सके क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं और भगवान कभी निराकार नहीं होते। जब रूप के दर्शन की बात आती है तो साकार और निराकार, अध्यात्मवादियों में ये दो श्रेणियां सदैव रही हैं। कोई भगवान को निराकार मानते हैं और कोई भगवान को साकार। कोई कहते हैं कि भगवान निराकार नहीं है, कोई कहते हैं भगवान साकार नहीं है, और ये दोनों ही गलत हैं। भगवान साकार भी हैं और भगवान निराकार भी हैं, ये सही समझ है। तो कई लोग भगवान को केवल निराकार मानते हैं, बहुत सारे वादों को प्रस्तुत करते हैं ये समझाने के लिए कि कैसे भगवान का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। इसको अलग अलग दर्शनों के द्वारा स्थापित करते हैं। ऐसे कई वाद हैं, प्रतिबिंबवाद, परिमाणवाद इत्यादि, और हम लोग भी ऐसे किसी वाद को मानते हैं जिसमें हम भगवान के रूप को स्वीकार करते हैं। तो साकारवादी, निराकारवादी और ऐसे कई वाद प्रस्तुत होते हैं। तो भगवान निराकार नहीं है इसका प्रमाण देने के लिए, केवल निराकार नहीं है इसका प्रमाण देने के लिए प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण दिया करते थे। जैसे वो उदाहरण देते थे एक पर्वत का, कि जब बड़ी दूर से पर्वत को देखा जाता है तो पर्वत के ऊपर जो बादल होते हैं वो ढक देते हैं पर्वत को, तो दूर से पर्वत केवल बादल दिखाई देता। तो अगर बहुत दूर से पर्वत को देखा जाए तो कोई कह सकता है कि पर्वत तो बादलों के समान है बस, लेकिन जब कोई थोड़ा निकट जाता है तो उसे वहां पर हरियाली दिखाई देती है, और निकट अंदर चला जाता है तो फिर उसको वहां पर वृक्ष दिखाई देते हैं, पशु पक्षी दिखाई देते हैं, बहुत से फलों के पेड़ दिखाई देते हैं, पत्थर दिखाई देते हैं, अर्थात बहुत सारी विविधताएं दिखाई देती हैं। इसी प्रकार प्रभुपाद समझाते थे कि जब कोई भगवान को दूर से केवल समझता है, निकट से नहीं समझ पाता, तो वो ब्रह्म के रूप में जानता है कि केवल बस निराकार ब्रह्म है। लेकिन कोई और निकट आ जाता है तो परमात्मा के रूप में जान लेता है। अगर कोई प्रवेश कर लेता है भक्ति के द्वारा, श्री कृष्ण के ज्ञान के द्वारा, लीलाओं में, तब वो भगवान के द्वारा प्रकट विविधताओं को भी समझ लेता है। तो इसीलिए भगवान को समझने के लिए अलग अलग दृष्टि से भगवान को देखा जाता है और लोग अपनी दृष्टि से भगवान को मानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक और उदाहरण प्रभुपाद दिया करते थे दूध का। वो कहते थे कि जब दूध को संबोधित किया जाता है कि ये दूध है, तो कोई उसको देखकर कहता है कि दूध सफेद है, कोई उसका स्वाद लेकर कहता है कि दूध स्वादिष्ट है, कोई उसको स्पर्श करके कहता है कि दूध तरल है, लिक्विड फॉर्म है। तो इस तरह से कोई दूध के विषय में सुनकर कुछ कहता है, तो अपनी अलग अलग इंद्रियों से एक ही चीज को हम अलग अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं। कोई कह सकता है दूध तो केवल एक सफेद पदार्थ है, दूध तो केवल एक स्वादिष्ट पदार्थ है, दूध तो केवल एक तरल पदार्थ है इत्यादि। दूध ये सब भी है, लेकिन केवल वही दूध नहीं है, इसको जानना चाहिए। केवल तरल चीज दूध दे ऐसे तो हर तरल चीज दूध हो जाएगी। इसी तरह जब कोई भगवान के विषय में कहते हैं तो कोई कहते हैं भगवान निराकार है, कोई कहते हैं भगवान साकार है, लेकिन भगवान ये सब हैं। ये साकार भी है, निराकार भी है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ये जो निराकार रूप है ये मुझसे ही प्रकट होता है। तो ऐसे ही जब हम भगवान को देखें तो कोई भगवान की कांति से प्रभावित हो जाता है, कोई भगवान के रूप से प्रभावित होता है, लेकिन सही दृष्टि यही है कि भगवान साकार भी हैं और निराकार भी। लेकिन जो निराकार, जो भगवान की कांति है, वो भगवान से आती है। साकार से निराकार आता है, निराकार से साकार नहीं आ सकता, इसका कोई अनुभव हमें नहीं है। कांति अर्थात ये जो ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकलने वाली कांति है, तो कांति को निकलने के लिए कोई स्रोत चाहिए। सूर्य की किरण के लिए सूर्य चाहिए, सूर्य की किरण से सूर्य प्रकट नहीं हो सकता, सूर्य से सूर्य की किरण प्रकट होती है। इसी तरह श्री कृष्ण से ब्रह्म ज्योति या निराकार रूप प्रकट होता है, निराकार से कृष्ण प्रकट नहीं हो सकते। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद इस विषय में समझाया करते थे। तो यहां पर वर्णन हो रहा है भगवान को देखने का, कैसे हम देख सकते हैं भगवान को, क्या चीज करनी चाहिए, क्यों हम भगवान को स्पष्ट देख नहीं पाते, क्यों बातें नहीं कर पाते। द्वारका के लोगों ने कर ली, तो प्रभुपाद इसके लिए बताते हैं कि द्वारका के वासी किसी प्रकार के सकाम कर्म, दार्शनिक चिंतन के भौतिक कलमश से रहित और शुद्ध भक्त थे, इसीलिए उनका दर्शन कर सके। तो हमें ये चीजें प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर हम कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या बाधाएं हैं कृष्ण के दर्शन में? प्रभुपाद यहां लिख रहे हैं सकाम कर्म, ये बाधा है। सकाम कर्म अर्थात भौतिक आसक्ति, किसी चीज को प्राप्त करने की आसक्ति, ये सकाम कर्म कहलाता है। तो भौतिक आसक्ति ये बहुत बड़ी बाधा है श्री कृष्ण को देखने में। जब तक हमारे हृदय में भौतिक आसक्ति बनी हुई है, कुछ चीज को प्राप्त करने की इच्छा बनी हुई है, तब तक हम श्री कृष्ण को नहीं देख सकते। हम भक्त होने के बाद भी अगर हमारी इच्छा कोई बहुत बहुत बड़ा काम कर देने की है, हमारी इच्छा कोई बहुत महत्वपूर्ण बहुत बड़ा मंदिर बना देने की है, एक दृष्टि से कहा जाता है तो अच्छी इच्छा है कि अगर हम मंदिर बनाना चाहते हैं भगवान के लिए, लेकिन दूसरी ओर अगर ये केवल अपना अहंकार बढ़ाने के लिए है तो वो भी भौतिक आसक्ति है कि कोई आकर गुणगान करे कि तुमने इतना बड़ा मंदिर बना दिया, बहुत बढ़िया, देखो कितना अच्छा मार्बल लगाया है, कितना अच्छा ये किया है। तो ये सुनने के लिए अगर किया गया कार्य है तो वो भौतिक आसक्ति है। हमें जानना चाहिए कि भगवान प्रकट करते हैं, जैसे प्रभुपाद ने किया, जिस समय प्रभुपाद के पास एक भी मंदिर नहीं थे, प्रभुपाद ने उस समय घोषणा की कि मेरे 108 मंदिर हैं, मैं 108 मंदिरों की, भगवान के मंदिरों की स्थापना कर चुका हूं। तो वो मंदिर थे, प्रभुपाद को विश्वास था कि भगवान उसको बनाते हैं, हम लोग तो केवल निमित्त हैं, हमें भगवान उपयोग कर लेते हैं, बनाते भगवान हैं। सो मंदिरों का निर्माण या अन्य कोई चीज इस जगत में, तो इसलिए भौतिक आसक्ति से दूर जाएंगे तब कृष्ण को देखेंगे। जब तक भौतिक आसक्ति है हम उस आसक्ति को देखते हैं, हर कार्य में हम कृष्ण को नहीं देख पाते, क्योंकि हम सोचते हैं मैं कर रहा हूं, कर्ता हम इति मन्यते। भगवान कहते हैं जब तक आप ये बांधते रहोगे कि कर्ता हम इति मन्यते, तब तक कृष्ण को नहीं देख सकते। जब तक हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, हमारी भौतिक आसक्ति के चलते हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, और इसीलिए हम कभी भगवान को नहीं देख सकते। तो प्रभुपाद यहां लिख रहे सकाम कर्म, ये पहली बाधा है कि जहां हम भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान को देख नहीं पाते। या फिर कई योगी होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, हिमालय में जाते हैं, तंत्र शास्त्र ये वो बहुत योग का पालन करते हैं, किस लिए? किसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान को नहीं, इस जगत में बड़ा शक्तिशाली बनने के लिए। हिरण्यकश्यपु इत्यादि कितनी तपस्या की, तो वो लोग भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान को कौन प्राप्त कर सकते हैं, इसका भी वर्णन प्रभुपाद तात्पर्य में करते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता है? सबसे पहले भगवान को देखने के लिए योग्यता है उनको देखने की तीव्रता, हृदय में बड़ी तीव्रता होनी चाहिए कि मुझे भगवान को देखना। हम में से कितने लोगों में तीव्रता है, हम तो भगवान का नाम सुनते ही आंखों में नींद आ जाती है, आंख बंद हो जाती है हमारी, कहां तीव्रता है भगवान को देखने की। तो इसलिए सबसे पहली चीज तीव्रता को उत्पन्न करना, और तीव्रता कब होगी, जब ये भौतिक आसक्तियों से हम परे होंगे। जब तक भौतिक आसक्ति, देखिए व्यक्ति को जब कुछ भौतिक चीज चाहिए होती है उसके प्रति कितनी तीव्रता होती है उसको पाने के लिए, और अगर वो ना मिले तो कभी कभी व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है ना, इस भौतिक जगत में देखते हैं। युवा अवस्था में कोई युवक युवती के प्रति आकर्षित हो जाता है, कितनी तीव्रता होती है उसको हृदय में केवल उसको देखने के लिए। आप लोग सब कॉलेज में पढ़ चुके हैं, ये सब चीजें आप लोग कर चुके हैं या जान चुके हैं या देख चुके हैं, तो कितनी तीव्रता होती है। कभी ऐसा होता है कि एक युवक के सामने उसकी जो प्रेयसी है वो आए और ये आंख बंद करके सो जाता है? हाँ, नहीं, बड़े आंखें खोलकर उसके दर्शन उसको देखता है। तो क्यों? क्योंकि तीव्रता है वो। इसीलिए रूप गोस्वामी कहते ऐसी तीव्रता चाहिए जो एक युवक को युवती के प्रति होती है, उसको किसी को बताना नहीं पड़ता। तो आप सोचिए जब उसको तीव्रता होती है वो क्या करता है? कुछ और उसके मन में आता नहीं, एक ही ख्याल, कब उसको देखूं, कब उसको देखूं। ऐसी तीव्रता चाहिए हमें श्री कृष्ण को देखने के लिए, और वो तीव्रता हमें भक्ति के द्वारा प्राप्त करनी चाहिए। तो इसीलिए ऐसी तीव्रता हृदय में आकर हमें श्री कृष्ण को ढूंढना चाहिए। इसीलिए गोस्वामियों ने मार्ग दिया, षड गोस्वामियों ने, कि कृष्ण को कैसे देख सकते हैं। क्या वो उस स्तर पर नहीं थे कि वो कृष्ण को देखते थे? नहीं, वे तो उस स्तर पर थे, लेकिन वे हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि वो कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सूनो कुतः, आप कहाँ हैं? श्री गोवर्धन कल्प पादप तले कालिंदी वन्य कुतः, हम ढूंढ रहे हैं आपको, आप कहाँ हैं? ये तीव्रता चाहिए श्री कृष्ण के लिए, उनको ढूंढना चाहिए हमें। जैसे प्रेमी प्रेमिका के लिए तरसता है, तड़पता है, देखना चाहता है, ऐसे जिस दिन हमारे हृदय में श्री कृष्ण को देखने की भावना होगी कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे कोई सुख नहीं चाहिए इस जगत का, मुझे कोई सुविधा नहीं चाहिए, मैं कृष्ण को देखना चाहता हूं बस। जैसे कई बार वो उदाहरण दिया जाता है एक चोर का, एक डाकू का, जिसने केवल सुन लिया कि श्री कृष्ण जब वन में जाते हैं तो बहुत सारे गहने आभूषण पहनते हैं, और आभूषणों की चोरी करने के लिए उसका तीव्र स्मरण करने लगा उन आभूषणों का, उन श्री कृष्ण का, कि कौन होंगे, मैं उनको देखना चाहता हूं। और इस तीव्रता से वो वृंदावन चला गया, और वृंदावन में उसको दर्शन हुए श्री कृष्ण के। किस लिए? तीव्रता थी हृदय में, वो देखना चाहता था सतत। और वो जो व्यक्ति बोल रहा था, जो प्रवचन दे रहा था, जिसका प्रवचन सुन के उसको इतना प्रभाव हुआ कि उसको श्री कृष्ण के दर्शन हुए, उसके हृदय में तीव्रता नहीं थी, इसीलिए उसे श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। तो इसीलिए केवल बोलना, केवल पढ़ना, केवल सुनाना पूर्ण नहीं है, हृदय में उस तीव्रता को लाना है कि बस एक दिन मुझे कृष्ण को देखना है, कृष्ण की प्राप्ति करनी है। हम सबके हृदय में वो तीव्रता नहीं है, हम अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं, अपनी सेवाओं में लग जाते हैं, अन्य चीजों में लग जाते हैं, लेकिन हृदय में कभी वो भाव नहीं आता कि मैं कृष्ण को देखना चाहता हूं, बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये भाव नहीं। तो उदाहरण है कि अगर एक डाकू कृष्ण 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 सोचकर श्री कृष्ण के दर्शन करके शुद्ध हो सकता है, तो फिर अगर हम भक्ति भाव से श्री कृष्ण को के स्मरण करें तो क्यों नहीं शुद्ध हो सकते। तो ये दूसरी चीज कि हमारे हृदय में बड़ी तीव्रता होनी चाहिए श्री कृष्ण को पाने के लिए। और तीसरी चीज, अगर श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो हमें भक्तों की कृपा लेनी चाहिए, आध्यात्मिक गुरु की सेवा करनी चाहिए, तब श्री कृष्ण की कृपा आती है। श्री कृष्ण किसी के द्वारा बाध्य नहीं किए जा सकते प्रकट होने के लिए, वो स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। उनको प्रकट करने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता कि मैंने 20 साल भक्ति कर ली, 50 साल भक्ति कर ली, कृष्ण को आना ही पड़ेगा। नहीं, आप 50 जन्म भक्ति कर लो, कृष्ण नहीं आएंगे। कृष्ण प्रकट होते हैं स्वेच्छा से, अपनी कृपा से वो अपने रूप को प्रकट कराते हैं, और ऐसे हमें कृष्ण को देखने का प्रयास करना चाहिए। तो जब हम आध्यात्मिक गुरु की सेवा करते हैं तो कृष्ण की कृपा आती है, और आध्यात्मिक गुरु की सेवा होती है भगवान के नाम के उच्चारण से। भगवान को कानों से देखने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, और अगर जो व्यक्ति भगवान को ढूंढ रहा है वो भी भगवान के दर्शन कर रहा है, क्योंकि उसके हृदय में केवल भगवान का स्मरण है। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो इसलिए श्री कृष्ण को देखना है तो उनका स्मरण बढ़ाना चाहिए हृदय में। और श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक है जो श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करता है, और आचार्य समझाते हैं कि इस श्लोक को, ये भागवत का सर्वश्रेष्ठ श्लोक है, और इस श्लोक को अगर हम स्मरण करते रहें, इसको कंठस्थ कर लें और सदैव इसका स्मरण करें, तो कृष्ण का स्मरण, कृष्ण को दर्शन हम कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 21वें अध्याय का 5वां श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आचार्यों को बहुत प्रिय है, और आचार्यों ने इसको भागवत का सर्वश्रेष्ठ, सबसे मधुर श्लोक माना है। और वो श्लोक है जहां गोपियां वेणु गीत में श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करती हैं। बरहा पीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विभ्रत्वासह कनक कपिशं वैजयंती चमाला रंद्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। ये गोपियों के द्वारा कहा गया श्लोक है। गोपियों के मन के भाव को सुखदेव गोस्वामी प्रकट करते, और ये वो श्लोक है जिसे सुनकर सुखदेव गोस्वामी अपना सारा ब्रह्म के प्रति आकर्षण छोड़कर भाग कर आए थे। ये वो श्लोक है जिसे सुनकर नित्यानंद प्रभु स्तब्ध हो गए थे, हिल नहीं पाए थे। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है बरहा पीड़म। इसमें वर्णन किया गया है श्री कृष्ण के सौंदर्य का, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा वर्णन है श्री कृष्ण का, और इसीलिए श्लोक, और कहा गया है सर्वश्रेष्ठ गोपियों के द्वारा। ऐसे कहते हैं कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी का स्वर इस जगत में एक योग्य व्यक्ति को ढूंढता है, किसके हृदय में प्रवेश करे, कोई नहीं मिलता इस जगत में। फिर वो ऊपर के लोकों में जाता है, कोई नहीं मिलता। इस ब्रह्मांड को पार चला जाता है, वैकुंठ लोकों में जाता है, कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता श्री कृष्ण की बांसुरी के स्वर को स्वीकार करने के लिए। फिर ब्रज में प्रवेश करता है, ब्रज में भी थोड़े बहुत योग्य लोग हैं, लेकिन उनके हृदय में प्रवेश नहीं करता, सीधे गोपियों के हृदय में जाता। तो श्री कृष्ण की बांसुरी का वर, और तो ऐसी श्रेष्ठ है गोपियां। आचार्य समझाते हैं कि भक्तों में श्रेष्ठ प्रहलाद को माना गया है, प्रहलाद से भी श्रेष्ठ किसको माना गया है, हनुमान जी को, हनुमान जी से श्रेष्ठ पांडवों को, पांडवों से श्रेष्ठ यदुवंशियों को, और यदुवंशियों से श्रेष्ठ ब्रजवासियों को, और ब्रजवासियों में सर्वश्रेष्ठ गोपियों को माना गया है। दरअसल जब उद्धव द्वारका में भगवान के साथ रह रहे थे तो थोड़ा सा अहंकार हो गया उनके हृदय में, देखिए भक्तों के हृदय में भी अहंकार हो सकता है। थोड़ा सा अहंकार हो गया कि मैं तो श्री कृष्ण के साथ रहता हूं, बड़ा निकट का हूं, श्री कृष्ण मुझसे पूछे बिना कोई कार्य नहीं करते, इतना ही नहीं मैं दिखता भी श्री कृष्ण की तरह हूं, वो कपड़े भी श्री कृष्ण के पहना करते थे, तो इसीलिए उनको थोड़ा सा अहंकार हो गया और श्री कृष्ण ने उन्हें एक संदेश देकर भेज दिया गोपियों के पास, जाओ गोपियों को मेरा संदेश दो। उद्देश्य था कि वो जाएं और देखें कि गोपियां क्या स्तर है उनका भक्ति का। और जब उद्धव आए, उद्धव ने बड़ा प्रयास किया गोपियों को कुछ सांत्वना देने के लिए, कुछ ज्ञान देने के लिए, ब्रह्म का स्मरण करो। गोपियों ने कहा हट जाओ यहां से, आप अगर हमें कृष्ण का विषय बता सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप हमें छोड़ दीजिए। तो उस समय गोपियों के भक्ति का जब स्तर उद्धव को पता चला, तब उद्धव ने हृदय में एक आशा की। आसम हो चरण रेनुज श्याम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीना। उद्धव कहते हैं कि मेरे हृदय में बस अब एक ही आकांक्षा है कि ये जो गोपियां हैं इनके चरण की रज चाहिए मुझे, मेरे सिर पर, मेरे मस्तक पर इनके चरण की धूल लेना चाहता हूं, लेकिन ये देंगी नहीं, इसीलिए वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीना। मेरी इच्छा है कि मैं वृंदावन में कोई गुल्म, कोई लता, कोई औषधि, छोटे छोटे पौधे, घास के तिनके, घास में बनकर पैदा हूं। क्यों? क्योंकि जब गोपियां चले हैं तो फिर मेरा, मेरे सर पर, मेरे मस्तक पर उनकी चरण रज आ जाए। ये उद्धव कह रहे हैं। तो जो इतने महान भक्त हैं, भगवान के निकट के भक्त हैं, लेकिन जब गोपियों को देखते हैं तो अपना सारा अहंकार खो बैठते हैं और कहते हैं ऐसी भक्ति कोई नहीं कर सकता। तो गोपियां जब भगवान का वर्णन करती है, वैसे इस श्लोक के समान और दो श्लोक भागवत में हैं, एक ब्रह्मा जी ने कहा और एक ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, लेकिन उनमें थोड़ा ऐश्वर्य भाव है, लेकिन इस श्लोक में केवल माधुर्य है। तो गोपियां वर्णन करती, बहुत सुंदर श्लोक है, गोपियां वर्णन करती हैं बरहा पीड़म, कि श्री कृष्ण ने मोर पंख धारण किया। ऊपर से शुरू कर रही है, अगर हम श्री कृष्ण को देखें तो सबसे ऊपर क्या दिखाई देता है? मोर पंख। बरहा पीड़म, तो कहती है कि भगवान ने बहुत सुंदर मोर पंख लगाया हुआ है। वैसे इस मोर पंख में सात रंग होते हैं, जब आप ध्यान से अगर मोर का पंख देखें तो सात रंग हैं उसमें, और भी एक जगह पे सात रंग पाए जाते हैं। कहां पर? इंद्रधनुष। तो यहां वर्णन कर रहे हैं कि बरहा पीड़म नटवर वपु, भगवान ने जो मस्तक पर मोर पंख लगाया हुआ है इस तरह है कि मानो इंद्रधनुष निकल आया है। और इंद्रधनुष कब निकलता है? जब घने घने काले बादल होते हैं इस तरफ, और इंद्रधनुष निकलता है बारिश के समय। तो भगवान का जो अंग है वो घनश्याम है, तो ऐसे श्याम वर्ण पर इंद्रधनुष निकल आया है, और उस समय बिजली भी चमकती है, तो इसीलिए विभ्रत वासम कनक कपिशम, भगवान जो वस्त्र धारण कर रहे हैं तो उनका सोने के समान, कनक या बिजली के समान उसका रंग है, तो ऐसा वर्णन हो रहा है। तो बरहा पीड़म नटवर वपु, भगवान को नटवर कहा गया है। शिवजी को क्या कहते हैं? नटराज। नट यानी नृत्य करने वाले, वैसे नट उनको भी कहा जाता है जो बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। भारत में ये पहले प्रथा थी कि कहीं पर कोई गांव इत्यादि में कोई खेल हुआ करते थे, कोई नाट्य लीला इत्यादि, तो उसके पहले नट आया करते थे, उसको नट कहते थे। तो बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहनकर लोगों को आकर्षित करने के लिए आते थे, तो नट नृत्य करने वाले को भी कहते। तो ये नटवर है, नटराज नहीं। नटराज यानी नृत्य करने वालों में राजा, लेकिन वर मतलब सर्वश्रेष्ठ, नटवर, उनसे कोई श्रेष्ठ नहीं है। भगवान कहां कहां नृत्य करते हैं? कालिया के ऊपर और व्यास लीला में, और कहीं गोपियों के साथ तो रासलीला में कर ही रहे हैं। जब छोटे थे तो गोपियां उनको कहती थी कि माखन मिलेगा नाच करके दिखाओ, तो वो नाचते थे गोपियों के सामने, और गोपियां ताली बजाती थी तो और नाचते थे। और एक बार मोरों के साथ भी नाचे, तभी उनको ये मोर पंख मिला। एक बार उन्होंने देखा कि मोर नाच रहे हैं तो वे भी नाचने लग गए, और इतना अच्छा नाचने लग गए कि सारे मोर रुक गए, सब मोर रुक कर उनको देखने लगे और श्री कृष्ण नाच रहे। तो उस समय मोरों ने प्रसन्न होकर अपना पंख श्री कृष्ण को दिया, जो उन्होंने अपने मस्तक पर धारण किया। तो ऐसे श्री कृष्ण नित्य करते। तो बरहा पीड़म नटवर वपु, वर वैसे भारत में है उसको भी कहते हैं जिसकी शादी हो रही है ना, उसको भी वर कहा जाता है। शादी के दिन व्यक्ति बड़ा सुंदर लगता है ना, बाकी समय नहीं लगता। लगता है क्या बाकी समय? शादी हो जाए अगले दिन अगर देखो तो उसकी फोटो देखो तो पूछ लेंगे कि किसकी शादी हुई है। वो बड़ा मेकअप वेकअप पता नहीं क्या क्या करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े। शादी के लिए व्यक्ति एक ही दिन के लिए कपड़े खरीदता है, फिर कभी जीवन में नहीं पहनता उसको, शायद हमें नहीं पता पहनता कि नहीं। वो विशेष कुछ कपड़ा होता है और शादी के लिए बनाया जाता है, फिर कभी नहीं पहनता। तो शादी में बहुत सुंदर लगता है वर, अर्थात लगता तो नहीं है, उसे लगता है कि वो बहुत सुंदर लग रहा है ना। यही माया है नहीं, लेकिन उसे लगता है मेरे से सुंदर कोई नहीं। बहुत सज धज के आते हैं लोग शादी में, हम लोगों ने देखा है कभी कभी, बैंड बाजा होता है, उसको सजाया जाता है, सेहरा होता है सर पर फूलों का, पता नहीं मतलब ऐसा वातावरण होता है कि मानो वो वैकुंठ प्राप्ति कर रहा है, सब ऐसा कुछ लग रहा है। बहुत लोग उसको गुणगान, बहुत बड़ा बड़ा विशेष काम आज के दिन पर। सुवर वर उसको भी कहते हैं, अर्थात जो बहुत उस दिन के लिए सुंदर होता है। तो कृष्ण नटवर है, बहुत सुंदर है, नृत्य करने वालों में श्रेष्ठ है, आकर्षक है और बहुत सुंदर है। तो बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, वो ऐसे फूल पहनते हैं अपने कान में, और कैसे पहनते हैं वो, दोनों कानों में नहीं लगाते हैं फूल, कभी एक कान में कभी इस कान में, स्टाइल है उनका। अभी देखा आजकल के लड़के एक कान में वो बाली पहनकर घूमते हैं, है ना, आजकल वो कृष्ण परंपरा है, वो स्टाइल, जितने भी स्टाइल है इस जगत में सब कृष्ण से आ रहे हैं। तो कृष्ण कभी एक कान में पहनते कभी दूसरे कान में, इसीलिए कहा गया कर्णयो, कर्णयो मतलब दोनों कान, लेकिन कर्णिकारा यानी एक फूल दोनों कान में। तो एक फूल तो दोनों कान में नहीं पहना जाता, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि कभी यहाँ पहनते कभी यहाँ। एक्चुअली कृष्ण बहुत स्टाइल मारते हैं, बहुत, उनके जैसा कोई स्टाइल मार नहीं सकता। इसलिए देखिए रोज नए नए रूप में, कभी हवा में उड़ रहा है उनका, कभी कुछ हो रहा है। तो वृंदावन में भी बहुत स्टाइल मारते हैं वो, और हमेशा, ऐसे नहीं कि कभी कभी केवल शादी में जाना है तब तैयार होते हैं, हर रोज। तो बहुत सारे उनके स्टाइल्स हैं, हम बताएंगे अगर समय हुआ आज। तो बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत वास, विभ्रत पहनते हैं ऐसा वास, ऐसे जो कि कनक कपिशम स्वर्ण रंग का है। वैजयंती च मालाम, और जो भगवान माला पहनते हैं उसको वैजयंती माला कहते हैं, इसीलिए उनका एक नाम है वनमाली। उनको वनमाली इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वन में बने हुए फूलों की, वन में मिलने वाले फूलों की माला पहनते हैं। तो ये जो वैजयंती माला होती है ये भगवान के गले से लेकर उनके कंधे उनके घुटनों तक जाती है, गले में पहनते, इतनी लंबी होनी चाहिए माला भगवान को जब पहना है, छोटी माला नहीं पहनते हैं भगवान। और उसमें पांच प्रकार के फूल होते हैं वैजयंती माला में, तो इसीलिए जब भगवान के लिए हार बनाए जाए तो एक रंग का हार नहीं बनाना चाहिए, कम से कम पांच प्रकार के फूल तो होने चाहिए। अभी सब लोग देखिए हैं कि नहीं है, नहीं है। तो पांच प्रकार के फूल होते हैं वैजयंती चमालाम, रंद्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे, और भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। ये चिंतन गोपियां कर रही हैं कि भगवान के मुख पर बहुत सुंदर हंसी है, भगवान बरहा पीड़म और बहुत सुंदर नृत्य कर रहे हैं। और रंध्रान वेणु, वेणु यानी भगवान की बांसुरी। भगवान की अलग अलग प्रकार की बांसुरियाँ होती हैं, वेणु, बांसुरी, वंशी, और ये सब नाम ऐसे ही नहीं हैं एक ही के, नहीं। बंसी यानी जो बांस से बनी होती है उसको वंशी कहते हैं, और उसमें कुछ 8 छिद्र होते हैं। तो ये सारे अलग अलग चीज़ें संस्कृत भाषा में हैं। जब अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका अलग अलग अर्थ होता है। इंग्लिश में हर एक को फ्लूट कह दिया, बस खत्म, एक ही चीज़। या फिर फ्रेंड, इंग्लिश में एक ही शब्द है फ्रेंड, लेकिन देखिए संस्कृत में सखा, मित्र, सुहृद, ये सारे अलग अलग शब्द हैं और इनके सारे अलग अलग अर्थ हैं। किसे सखा कहा जाता है, किसे मित्र कहा जाता है, किसे सुहृद कहा जाता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में एक ही फ्रेंड, बस। ऐसे ही एक फ्लूट, बस, लेकिन अलग अलग है। भगवान की बंसी बांस से बनी होती है, भगवान की मुरली, मुरली, बांसुरी, वंशी, अलग अलग नाम है, वेणु। तो भगवान की जो मुरली है वो रत्नों से बनी होती है। तो ऐसे अलग अलग चीज को अलग अलग कहा जाता है। तो यहाँ पर भगवान का वर्णन है कि वेणु, वेणु बजा रहे हैं, रंध्रान वेणु अधर सुधया। और जब भगवान बजाते हैं तो अमृत को उसके छेदों में भर देते हैं, लेकिन वो वेणु रख नहीं पाती, इसीलिए छेदों से बाहर संगीत के माध्यम से प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान बजाते हुए वेणु, रंध्रान वेणु अधर सुधया, पूरयन गोप वृंदय वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। और अपने चरणों से वृंदावन के वनों में प्रवेश कर रहे हैं। वृंदावण्यम सपद रमणम, अपने चरणों को वो लाल। भगवान के वैसे चरण चिन्ह वृंदावन में अलग अलग स्थानों में पाए जाते हैं, आज भी हम लोग देख सकते हैं। आज भी कई स्थान हैं जैसे चरण पहाड़ी इत्यादि, ये बरसाना के निकट है, और एक चरण पहाड़ी काम्यवन में है, एक चरण पहाड़ी नंद बाबा का जो महल है नंदगाम उसके पास है। तो ऐसे कई स्थान हैं जहां आज भी भगवान के चरण चिन्ह दिखाई देते हैं, उनकी मुरली के चिन्ह दिखाई देते हैं। तो उस समय भी जब भगवान चलते थे तो उनके चिन्ह बन जाते थे और कोई भी उस पर पाँव नहीं रखता था। कितनी सारी लाखों गायें थीं लेकिन सब ध्यान से चलते थे कि श्री कृष्ण के चरण चिन्हों पर पांव नहीं रखना। तो स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति ही, और इससे सारे भगवान का गुणगान उनके गोप बाल, उनके भक्त करते हैं। तो इस श्लोक को हमें याद रखना चाहिए और सदैव मन में इस श्लोक को स्मरण करते रहना चाहिए। जहाँ भी हम बैठे हैं, हम कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मन में इसको स्मरण करना। बरहा पीड़म, भगवान ने मोर मुकुट पहना हुआ है, नटवर वपु बहुत सुंदर नृत्य करते हैं, कर्णयो कर्णिकारम विभ्रतवास कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम, ये इतना स्मरण करते रहेंगे तो निश्चित हृदय शुद्ध हो जाएगा। हर समय केवल यही स्मरण, कैसे दिखते हैं कृष्ण, क्या पहनते हैं, कौन सी माला पहनी है, कैसे चलते हैं, कैसे बांसुरी बजाते हैं, कैसे वृंदावन में प्रवेश करते हैं, बस। तो बहुत सरल है। तो इसीलिए श्लोक को आचार्यों ने बहुत महत्व दिया कि हमें किस प्रकार भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए। सो इसीलिए गुरु की सेवा के द्वारा, भगवान के नाम के उच्चारण, भगवान की लीलाओं के श्रवण के द्वारा हमें गुरु की सेवा का अवसर मिलता है। गुरु की सेवा के अवसर से हम श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि अगर गुरु के बताए मार्ग पर हम चलते हैं तो भौतिक आसक्तियां हमारी चली जाती हैं, श्री कृष्ण की कृपा आती है और फिर हम श्री कृष्ण को देख सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।